In dem kostbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus möchten wir alle weltweit aus der Schweiz
Hamare Prabhu Yesu Masih ke Naam mein hum aapka Swagat karte hain Hum bade
Für das Vorrecht dass der Gute hier
ke hum Prabhu ke bade dhanyavadi hain ke wo कि हमारे लिए इतना मुश्किल का समय है हमारे लोग हम लोग आपस में मिल भी नहीं सकते और कहीं आ जा भी नहीं सकते और सारी जगहों पर और हम इस अनंत सुसमाचार को सुन सकते हैं आज हम में से बहुत कम हैं जो कि मिल पाते हैं पर प्रभु हमारी इच्छाओं को हमारी आशाओं को पूरा करे मैं और प्रभु के वचन में से गलतियों 6 अध्याय को पढ़ना चाहूंगा गलतियों 6 अध्याय को पढ़ना चाहूंगा गलतियों 6 और 14 से 16 आयत तक गलतियों 6 14 से 16 आयत तक गलतियों 6 14 से 16 तक पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं
Und erbarmen, nämlich über das Israel Gottes. Es heißt hier
Or,
in Galater 6,
यहां लिखा है,
Vers 14 geschrieben,
गलतियों 6 में,
wir uns nur
des 14वीं आयत में लिखा है,
unseres Herrn Jesus Christus rühmen.
केवल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ क्योंकि हम उसके द्वारा एक नई सृष्टि बन गए हैं क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि जितने हम इस नियम पर चलेंगे उन पर परमेश्वर के इज़राइल पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे क्योंकि जिससे कि हम प्रभु के आने पर हम प्रार्थना करते हैं हे हमारे स्वर्गीय पिता और हम तेरे उस खून खरीदे हुए संतान के समान हैं हम तेरे से प्रार्थना करते हैं क्योंकि तू हमें अपने वचन से आगे बढ़ा और प्रभु हम देखते हैं हमारी सारी आवश्यकताओं को तू देखता है और इससे तेरे हमको ये आशीष मिलती है और मुझे हमें आशीष दे अनुग्रह दे कि हम हर बातों में तुझ पर विश्वास कर चुके हैं और हम तेरे अंदर ही बने रहें और हम प्रभु और हम सब देख पाए कि वो सारी बातें उद्धार के काम को हमारे हृदय उस कार्य को देखकर आनंदित हो जाएं और तेरा पवित्र आत्मा और वो तेरी शांति और तेरी दया हम पर होती रहे और प्रभु के आशीषित नाम में हम मांग लेते हैं आमीन आमीन और मैं भाई फ्रैंक भी अब आपको इस मंच से जहां पर आप सब एकत्रित हैं सारे संसार में और प्रेम में एकत्रित हुए हैं इसलिए क्योंकि हम ये जानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया और अभी इस वचन में हमने सुना जो प्रभु यीशु में कोई होता है तो वो एक नया प्राणी बन जाता है, नई सृष्टि बन जाता है, और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उस काम के लिए जो उसने हमारे उद्धार के काम को कार्यान्वित कर दिया, कंप्लीट कर दिया, और अपने अनुग्रह के द्वारा जो हमको मिला और उसने हमको जो दिया अपना अनुग्रह, उसके द्वारा हम एक दूसरे, हम आपको सबको बहुत सारे भाई बहनों की ओर से ग्रीटिंग्स देते हैं, और बहुत देशों से, और भाई बुखारेस्ट से, और ब्रदर टाटी ब्रसल से, और इस जगह से भी हम आपको ग्रीट करते हैं। और जो भी भाई इस समय दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, प्रभु आप सबको, आपके साथ हो, और प्रभु आपकी अगुवाई करे, और आपको और सही शब्दों का चयन दे, सही शब्दों का इस्तेमाल दे, और सारे भाई लोग जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, हम सब लोगों को, और हम सबको पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से जुड़ रहे हैं, हम सबके लिए कौन सोच सकता था 10-20 साल पहले, कौन सोच सकता था कि इस प्रकार से ये पॉसिबल हो पाएगा। और हम शायद सारे संसार में इस प्रकार से जा पाएंगे, ये कौन सोच सकता था। और इस आत्मिक वचन के ऊपर हम इस प्रकार से इस सुसमाचार को देख पाएंगे, और परमेश्वर के राज का जो सुसमाचार है, जो बाइबल कहती है कि सारे संसार के कोने कोने में एक गवाही के तौर पर प्रचार किया जाएगा, और उसके बाद अंत आ जाएगा, ये वचन में लिखा है। हमने इस बात को देखा, हम इस बात के बहुत नजदीक आ गए हैं। आप सब जानते हैं, जब मैंने आपसे कहा था पिछले साल के आखिरी दिनों में, और ये मुझे यकीन प्रभु की ओर से हो गया था कि प्रभु, मैंने जो कुछ भी तूने मुझे आज्ञा दी थी, मैंने उसको पूरा किया है, कोशिश करके पूरा किया है, और जो आखिरी मैसेज जो प्रचार किया जाएगा, किया गया। और जैसे भाई ब्रैनम ने भी कहा था, जब उनको कहा गया था कि 11 जून को 1933 को के जो संदेश है जो उनको दिया गया था, वो प्रभु के दूसरे आने के लिए, प्रभु के वापस आने के लिए मार्ग तैयार करेगा, वो संदेश। उसके बाद प्रभु ने उनको बुला लिया, और 10 दिसंबर 1965 को, और जो कुछ भी उनको प्रभु से मिला, उस समय से हमारे पास ये वचन है, ये प्रकाशित वचन हमारे पास है। और जिस प्रकार भाई बाउंगाउट ने कहा, ये वो संदेश है जो वापस बाइबल की तरफ हमें ले जाता है, वचन की तरफ हमें ले जाता है, परमेश्वर की तरफ ले जाता है, और उस प्रारंभ की तरफ ले जाता है। और इससे परमेश्वर ने हमको वो अनुग्रह, वो फजल दिया। हम बहुत सारी कलीसियाओं में पाए जाते थे, बहुत धर्मों में पाए जाते थे, संप्रदायों में पाए जाते थे, और प्रभु ने हमें वहां से वापस बुलाया, बाहर बुलाया, और उसने कहा कि हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ और अपने आप को अलग कर लो, और जो अपवित्र और नापाक चीज है उसको मत छुओ। और समय को ध्यान में रखते हुए, जो जिस समय में हम रह रहे हैं, जिस वक्त में रह रहे हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है, और मेरे अपने सारी जिंदगी के अंदर मैंने तो अपने सारे जीवन में सिर्फ वचन का प्रचार ही करना था, हर शनिवार, हर दिन, हर संडे और बहुत सालों तक, और संडे को दो बारी, सुबह भी और शाम को भी। और अब हम देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। हम देखते हैं वातावरण चेंज हो रहा है, माहौल चेंज हो रहा है, दुनिया की में गर्मी बढ़ती जा रही है और वायरस इन्फेक्शन बढ़ रहा है और ये सारी चीजें आ गई, मुसीबतें आ गई। और हजारों लोग जो हैं, सैकड़ों लोग जो हैं, वो यहाँ नहीं आए, पर प्रभु फिर भी है। इस सब समय में भी हम इस चीज को जान पा रहे हैं कि जो अंत का समय वो है हमारे सामने। और प्रभु ने कहा ये तो मुसीबतों का प्रारंभ है, ये तो उन मुसीबतों की शुरुआत है, प्रभु ने कहा। और हम जो जानते हैं, हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु हमको, प्रभु वापस आएगा और प्रभु आकर के हमको हमारे घर लेकर जाएंगे। और आज हम उन सारे वर्षों की तरफ, सारे समय को, सारे सालों को देखते हैं वापस मुड़ के कि 1949 से क्या हुआ। मैं उस बात से अवगत हूँ, मैं उस बात से मेरी पहचान है कि भाई ब्रैनम के द्वारा परमेश्वर यानी खुदावन इस दुनिया में क्या कर रहा था। उसके बाद वो साल आए, वो वक्त आया 1955 और 1958 और 60 और 62 और उसके बाद और साल आए। हम प्रभु के इतने आभारी हैं, इतने थैंकफुल हैं कि हम अपने दिलों से उसके आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं कि हमने उस अनुग्रह, उस फजल को पाया कि हम उस चीज को बिलीव कर पाए, सोच पाए, ईमान ला पाए, एक सवाल नहीं उठा पाते। अब कोई डाउट या कोई संदेह या कोई डाउट या शक और शुबा हमारे जीवनों में नहीं है। हमारे लिए तो ये तो एक सामर्थ्य थी जिसकी हमने गवाही दी, हमने देखा अपने जीवनों में, हमने व्यक्तिगत रूप से देखा, इस चीज को देखा, इसको चश्मदीद देखा कि उन मीटिंगों में कि हमने सब कुछ देखा और उन चीजों का अनुभव किया, क्योंकि वो सारी चीजें उस प्रकार से ही हुई जिस प्रकार से हमारे प्रभु के समय में होती थी। कि वो कह सकता था अपने लोगों से कि वो कौन थे, वो कहां से, क्या बीमारी उनको है, और सारे डिटेल, सारी बातें उनको भाई ब्रैनम के द्वारा भी प्रभु बता देता था। और ये और बार बार हम देखते हैं और वहां पर जो चंगाई की जो लाइनें खड़ी होती थी उनमें भी, और मैं प्रभु का अनंत काल तक के लिए आभारी हूं और शुक्रगुजार हूं कि मैं उस मिनिस्ट्री से जुड़ सका, इस बंदे की इस मिनिस्ट्री से जुड़ सका, इस भाई की मिनिस्ट्री से, सेवकाई से जुड़ सका, और उसके साथ उसी मेज पे मैंने खाना खाया और मैंने उसी गाड़ी में उसके साथ सफर किया और उन्हीं मंडलियों में उनके साथ रहा, सभाओं में रहा, क्योंकि ये वो व्यक्ति था प्रभु का जिसने मुझे बताया था 2 दिसंबर 1962 को। उन्होंने बताया, उसने कहा, उन्होंने एक एक शब्द, एक एक अल्फाज कहा कि प्रभु ने 2 अप्रैल को जो 1962 में प्रभु ने मुझसे कहा, वही वाली बात भाई ब्रैनम ने मुझे बात शब्द बाय शब्द बता दी थी कि हम सोच रहे थे कि वहां पर एक अकाल आएगा और खाने पीने की चीजों का, संसारिक चीजों का अकाल आएगा, पर प्रभु की तो मर्जी ये थी कि अकाल वो आएगा कि उसके जो अल्फाज हैं, प्रभु का जो संदेश है, प्रभु का जो मैसेज है, उसका अकाल आएगा, उसके सुनने का अकाल आएगा,
die auf Tonband aufgenommen worden sind. Brüder und Schwestern,
और वो सारा का सारा भोजन जो था उन टेप्स में शामिल किया गया, इकट्ठा किया गया, और प्रभु ने उस सब की रखवाली करी, उस सब को उसने संभाल के रखा, और मेरे साथ चार लोग थे, चार देशों से जो जेफरसनविल जा रहे थे, जो कि मेरे साथ आंखों के देखे और कानों के सुने हुए गवाह थे उस समय के, जब भाई ब्रनम ने मुझसे कहा ये बातें कही। उन्होंने कहा मैं कोई एक भी कहानी, एक भी अल्फाज बना के नहीं कह रहा, मैं तो उस अलौकिक, उस अनहोने, उस रूहानी एक्सपीरियंस अनुभव के बारे में कह रहा हूँ, जैसे कि प्रभु ने कहा। पुराने सालों के बारे में 1958 से लेकर हमारे पास रेगुलर मीटिंग होती थी, अनुवाद होते थे, भाई ब्रनम के सर्मन्स के ट्रांसलेशन होते थे, और एक समय आया जबकि ये मैसेज संदेश, ये सारे संसार में ले जाने का, बांटने का समय आया, और आज भी यही सी प्रभु ने हमको ऐसा अनुग्रह दिया। जब मैं अप्रैल में 1966 में जब वापस आया, जब भाई ब्रनम के फ्यूनरल के बाद वापस आया, मुझे ये पता था अब मुझे क्या करना है, और मैंने वो किया, और मैंने उन सभाओं का क्या का इंतजाम किया, प्रयोजन किया कि ये संदेश अब लक्समबर्ग रेडियो के द्वारा जितने जर्मन बोले जाने वाले, जर्मन भाषा बोले जाने, सुनने जाने वाले देश प्रदेश थे, वहां पर ये बोला जाएगा। और प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया कि ये जो सभाएं थी, ये प्रोग्राम, ये जो थी, ये मीटिंग्स रेडियो लक्समबर्ग के द्वारा हर संडे को प्रचारित करी जाती थी, ये मीटिंग सभाएं, ये वचन, और जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और इन सभी जगहों पर। जब मैं इनके बारे में सोचता हूं कि प्रभु किस प्रकार से इनका प्रयोजन कर रहा था और किस प्रकार से, मुझे क्या पता था विश्वासी कहां कहां पाए जाते हैं, कहां रहते हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें, हम प्रभु का कितना धन्यवाद कर सकते हैं। और उसके बाद में ईस्टर्न यूरोप, पूर्वी यूरोप भी उसमें जुड़ गया, और हम और सारी भाषाओं में हमने 174 देशों के अंदर प्रभु के प्रचार को बांट दिया है। 174 देशों के अंदर ये प्रभु का जो पाक तरीन जो संदेश है, कलाम है, 174 देशों के अंदर 174 कंट्रीज में हमने बांट दिया, और जिससे के लोग इसको सुन सकें, विश्वास कर सकें और ग्रहण कर सकें। आज तो मिलियंस में, लाखों में लोग जो हैं, प्रभु ने इस समय के लिए जिनको नियुक्त किया, चुना है, उनके पास ये संदेश, ये वचन पहुंच चुका है। मैं इसके बारे में सोच रहा था, सिर्फ हमारी भाषा में नहीं, प्रभु ने कितनी सारी भाषाओं के लिए दरवाजे खोल दिए, मार्ग खोल दिए, रास्ते तैयार कर दिए। इंग्लिश लैंग्वेज, सिर्फ अंग्रेजी एक ऐसी बात, और बहुत सारी भाषाएं, और इस इस प्रभु के संदेश का आगमन और प्रचार किया गया। हमारे पास अब कोई बहाना नहीं रहेगा, कोई बहाना नहीं रहेगा। न्याय के दिन मैं आपके सामने कुछ संदेश लेकर आया हूँ जो कि प्रभु की वापसी के बारे में बताते हैं, और मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इससे पहले कि मैं वो करूं, कि प्रभु हमारा बचाने वाला प्रभु, जैसा कि सुषमाचार में बताया गया, उसने अपने चेलों से कहा कि यरूशलेम के साथ क्या होने वाला है, और उस प्रभु के आने के पहले क्या होगा, और इस संसार के अंत के आने से पहले क्या होगा। हमारे प्रभु ने कहा मत्ती 24 में, मरकुस 13 में और लूका 21 में, और मुझे ये बातें छू जाती हैं। जब हमारा प्रभु माउंट ऑलिव में गया, जैतून के पर्वत पर गया और वहां बैठा था, आप पढ़ सकते हैं, और मंदिर के सामने वो बैठा था, हैकल के सामने बैठा था, और एक तरफ यरूशलेम दिख रहा था और बैतून के पहाड़ पर, और उसने कहा, और उसने जहां पर अब सिर्फ जहां वह बसें खड़ी होती हैं, पार्किंग हो गई, वहां से आप गतसमनी के बाग को देख सकते हैं, और वहां से आप उस मंदिर को भी देख सकते थे, और उस मंदिर में, और उसने मंदिर को देखकर कहा कि हमारे समय में क्या हो रहा है, और उस समय में क्या हुआ, और आजकल क्या चल रहा है इस समय में, जबकि अंत का समय आ गया। प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा था बहुत मुसीबतें आएंगी, बुरी बुरी मुसीबतें आएंगी, आफतें आएंगी, और कुछ भी ऐसा ना बचेगा जैसा कि पहले था, नॉर्मल नहीं रहेगा, सामान्य नहीं रहेगा, कि प्रभु का आगमन जो है वो इतना नजदीक है। मैं ये जानता हूँ, कह सकता हूँ कि अब कोई लंबे लंबे भाषाएं और लंबे लंबे सरमन देने की जरूरत नहीं है, अब तो सिर्फ ये कहते हैं कि हम ये बातें कहते हैं कि हम इन बातों को अनुभव कर सकें, कि हमारी जो सभाएं हैं, क्योंकि और ये बात अगर कोई छोटे छोटे घर की मंडलियां हैं जहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जहां पर एक बड़ी बिल्डिंग हो ऐसी, जहां पर 565 सीटें हैं और बालकनी है, 125 और है, तभी इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम सरकार के नियमों के अनुसार कर पाए, और पर मुझे आज हम नहीं कर पा रहे, पर मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही इन कुर्सियों पर, इन सीटों पर हम आकर दोबारा बैठ सकते हैं और फिर दोबारा मिलकर आ सकते हैं, जैसा बताया गया, ना केवल सुनने के लिए बल्कि उनको अपने जीवनों में अनुभव करने के लिए, क्योंकि इस ये कलीसिया जो सच्ची कलीसिया है, इसका इस धरती पर रहने का जो समय है, ये जो समय है ये वैसा हो जाएगा इस कलीसिया का जैसा कि आरंभ की कलीसिया का था। और जिसने भी भाई ब्रनम के सरमन को सुना हो उसमें वो कहते थे कि वो जो ऊपरा जो सिर जो सिरे का पत्थर है जो कैपस्टोन है वो और अनुग्रह के द्वारा किस प्रकार से प्रभु अल्फा और ओमेगा है आदि और अंत है और ये वो कोने का पत्थर है जिसपे नींव रखी गई और यही वो पत्थर है जिसके द्वारा उस बिल्डिंग को कंप्लीट करके यानी कि कैपस्टोन यानी कि सिरे का जो पत्थर जो सिरे पे रखा जाता है वो ऊपर रखा जाता इसी पत्थर से शुरुआत हुई इसी से अंत है। और हम देखेंगे वचन में पहला थिसलोनिकियों दो अध्याय और 19 से लेके पहला थिस्सलुनीकियों दो 19 से
wenn nicht auch hier es sei vor dem Angesicht unseres Herrn Jesus. Und jetzt kommt das ganz Besondere. Wenn nicht auch ihr es seid, und hier steht
geschrieben,
seine Wiederkunft. Wir haben es im Einleitungswort gehört.
भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ना होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। और अगर हम आज पढ़ते हैं वो जो मुकुट जो है बड़ाई का आनंद का जो मुकुट है जिसने के उस समय में उस आत्मिक वचन को सुना क्योंकि इसकी जो महिमा है वो केवल परमेश्वर को मिलती है केवल परमेश्वर के लिए है क्योंकि उन्होंने अपने हृदयों से उसको जाना और माना और विश्वास किया। वो जो आनंद है वो जो पौलुस का जो आनंद था क्यों उसने जो प्रचार किया उसका जो प्रचार था वो बेकार में नहीं गया पर उसने वो फल लाया। और जिस प्रकार से एक मुकुट होता है उसी प्रकार से पौलुस भी जो है उसने उन विश्वासियों की तरफ देखा जो उन्होंने विजय प्राप्त करी और वचन के ऊपर चलने के द्वारा उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था और उन्होंने अपने मनों से इस चीज को जाना और माना और उन्होंने ये बताया ये जो मैसेज है संदेश है इस मैसेज के द्वारा इस समय के द्वारा इस संदेश के द्वारा जो है अब मुकुट धारण करने का समय आ रहा है ये इनाम पाने का यानी कि मुकुट मिलने का समय आ रहा है। मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है कि अगर आपने अपन उस जीवन का मुकुट इस संदेश के द्वारा जो विजय का मुकुट है उसको अगर आपने पा लिया अगर पा लें और अगर हम प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय को पढ़ते हैं जब 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 के मेमने ने सील किताब को लिया तो 24 प्राचीन जो थे उन्होंने अपने मुकुट जो थे वो उतार के रख दिए प्रभु के सामने कि अब प्रभु हमें महिमा दे उसके उसके उन्होंने अपने अपने मुकुट जो उनको दिए गए थे विजय के, उन्होंने वो मुकुट उतार दिए, वो नम्र हो गए और उन्होंने प्रभु के आगे उसके चरणों में वो मुकुट रख दिए, क्योंकि केवल महिमा जो है सिर्फ एक प्रभु के, प्रभु ही उस महिमा के योग्य है। जब एक सेवक ने सब कुछ कर दिया जो प्रभु ने कहा, तब उसको सिर्फ ये कहना चाहिए कि मैं तो एक बेकार का निकम्मा मनुष्य हूँ, मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं पाई जाती और मेरे अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं पाई जाती, और प्रभु यही चाहता था। और सिर्फ सारी की सारी आदर और महिमा जो है वो केवल परमेश्वर को मिले। और भाई और बहनों, इस बात को सोच लें कि हम उस नबी या उस संदेश वाहक या उस मैसेंजर से नहीं जुड़े हुए, हम तो उस परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, जिसको परमेश्वर, जिसने उस नबी को भेजा, जिसने उस संदेश वाहक को भेजा। और केवल उस प्रभु के लिए। यहाँ पर ये कहा जाए, एक बार फिर कहा जाए कि हम, हमारे लिए एक बड़े दुख की बात होती है कि हम देख पा रहे हैं एक ऐसा समय आ गया कि इतना कम समय रह गया, प्रभु के आने के समय में के लिए कितना कम समय रह गया कि जो विश्वासी हैं कि वो एक मन हो जाएं, एक आत्मिक, एक आत्मा में जुड़ जाएं, एक मन में जुड़ जाएं, जैसा कि वो प्रारंभ में था, शुरुआत में था, उसी प्रकार से आज भी एक मन में, एक आत्मा में जुड़ जाएं विश्वासी लोग। अगर हम इसके बारे में सोचें, कितने सारे ग्रुप आज बन गए हैं, कितने सारे टुकड़े बन गए हैं, जो कहेंगे हम तो संदेश को मानते हैं, हम मैसेज को मानते हैं, और वो सब वो कर रहे हैं जो मर्जी, जो अपनी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी के चलाए चल रहे हैं, अपनी अपनी शिक्षा के चलाए चल रहे हैं। ये समय खत्म हो चुका है। हम देखते हैं कि सारे संसार में कि ब्रैनम के जो मानने वाले लोग हैं, इनको अब चाहिए कि, और वो कह रहे हैं, हर ग्रुप ये कह रहा है कि प्रभु मेरे लिए आ रहा है, प्रभु मेरे लिए आ रहा है, प्रभु मेरे लिए आ रहा है, पर इनमें से कोई भी ऐसा वादा नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं, ये लोगों को वर्गला रहे हैं कि प्रभु मेरे लिए आ रहा, मेरे लिए आ रहा, मेरे लिए आ रहा, पर ये शिक्षाएं अगर अलग हैं तो क्या प्रभु सबके लिए अलग 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 आ रहा है? केवल जो चुने हुए लोग हैं वो भरमाए नहीं जाएंगे, बाकी सब भरमाए जाएंगे। वो इंसान के पीछे और मनुष्य के पीछे नहीं भागेंगे, वो केवल परमेश्वर के पीछे, खुदा के पीछे, प्रभु के पीछे भागेंगे। वो सिर्फ हमारे प्रभु के पीछे, उसके उसके नक्शे कदम पर चलेंगे, और उसके अनुग्रह के द्वारा हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और अगले अध्याय में, पहला थिस्सलुनीकियों तीसरे अध्याय में, पहला थिस्सलुनीकियों तीन अध्याय,
Gott und Vater tadellos in Heiligkeit seien.
तेरहवीं आयत में देखिए, तेरहवीं आयत, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे।
Mit welch eine Betonung der Apostel dies alles
sagen. देखिए यहाँ पर प्रेरित क्या कह रहा है, रसूल क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा गया है, कि तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे, मेरा और आपका मन ऐसा स्थिर हो जाना चाहिए प्रभु में, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हम अपने पिता और परमेश्वर के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे, बेदाग ठहरे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने के समय पर। प्रभु का धन्यवाद हो भाई और बहनों, ये अल्फाज, इस ये अल्फाज हमारे दिलों को छू जाते हैं। इनके लिए दूसरों के दिल में इसके लिए कोई मतलब नहीं है, उनके लिए अपनी अलग अलग शिक्षाएं हैं, पर प्रभु का जो मन है, और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हम एक बार फिर से इस बारे में फिर से कहते हैं कि हम कहते हैं कि हम एक बार फिर से इस बात को कहते हैं, ये जो संदेश यहाँ लिखा भाइयों और बहनों, ये समझिए कि ये आपको कहा जा रहा है व्यक्तिगत रूप से, और सारे संसार को कहा जा रहा है कि हम पवित्रता में निर्दोष ठहरें, परमेश्वर अपने पिता के सामने निर्दोष ठहरें पवित्रता में, हालेलुया, और पवित्रता में, और अपने प्रभु यीशु मसीह के आने के समय में। हम जानते हैं कि प्रभु के आने के समय सब लोग जो हमसे पहले गए हैं, वो पहले उनको लेकर आएगा। पहला थिसलुनियों चौथा अध्याय हम पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनियों चार अध्याय पंद्रह और सोलह कि हम, ये मेरा विचार नहीं है, पौलुस का भी नहीं कहना, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोयों से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वो पहले उठेंगे। देखिए वो क्या कह रहा है, हम में से कौन ऐसे हैं जो के प्रभु के आने के दिन तक बचे रहेंगे। यहाँ दो टाइप, और देखिए, और मैं जानता हूँ कि प्रभु का जो आना है बहुत नजदीक है, और समयों के अनुसार अब जो हो रहा
है, और कि हमको
ये जो समय दिखाई दे रहे हैं, जैसे प्रभु ने कहा, जब इन सारी चीजों को होता हुए देखो तो अपने सिरों को ऊपर उठाओ, क्योंकि अब तुम्हारे उद्धार का काम पूरा होने पर है, तुम्हारा उद्धार अब बिल्कुल नजदीक आ गया। हम देखते हैं और हम अपने दिलों को, अपने मनों को सिर्फ विश्वास के द्वारा ऊपर उठाते हैं और ताकते हैं कि हमारी देहों का, हमारे बॉडीज का उद्धार नजदीक है। और देखिए, ये नहीं कि कोई नबी, ये नहीं कि कोई टीचिंग, ये नहीं कि कोई आत्मिक बात हम कर रहे हैं, वहां लिखा है प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, यानी कि पर्सनली व्यक्तिगत रूप से प्रभु उतरेगा, और ललकार के साथ और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी,
vom Himmel herabkommen und
और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, उसके बाद हम, उसके बाद हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, हम उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो इस समय के लिए, इस समय के लिए, इससे और प्रभु के आने के बारे में क्या लिखा है, जो कुछ लिखा है ये सब कुछ, सब कुछ जो उसके आने के बारे में जरूरी है वो सब कुछ लिख दिया है। और कौन इस बात से महरूम रह जाएगा, और जो उसके वचन में बना रहेगा वही सच्चाई को प्राप्त कर पाएगा, इस राह को प्राप्त कर पाएगा। और पौलुस ने कहा, पौलुस ने यह कहा 15वीं आयत में, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार ये कहते हैं, यानी कि प्रभु यूं फरमाता है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दस से द लॉर्ड, यानी कि प्रभु की आवाज है, प्रभु का कहना है, किसी इंसान का कहना नहीं है। और सारी बातें समझा रहा है, ललकार, प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर की तुरही, ये सारी बातों के बारे में पौलुस यहाँ लिख रहा है। मुझे बताएं भाई और बहनों, बताएं मुझे, क्या इससे भी ज्यादा सफाई से ये बात लिखी जा सकती है, क्या इससे भी ज्यादा सफाई से बताई जा सकती है कि प्रभु का आना किस प्रकार से होगा, क्या होगा, क्या इससे ज्यादा सफाई से कोई बात कही जा सकती है, इससे ज्यादा क्लियर और क्या करना है कि हम एक बार भी हमने कोई भी अनुवाद स्वीकार नहीं किया, हम तो प्रभु के उस प्रतिज्ञा किए हुए उस अद्भुत वचन पर, अलौकिक वचन पर हम अपने मन को टिकाए हुए हैं, जो कि हमको प्रचार किया गया और बताया गया उस अलौकिक सच्चाई के द्वारा, उसमें से एक शब्द भी इधर से उधर नहीं करना है। और यही वो सच्चाई का संदेश है, जिस प्रकार से प्रभु का वचन सच्चा है। और पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5 और इसकी 23 आयत, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे तौर पर निर्दोष सुरक्षित रहें। हमारे प्रभु के आने के दिन तक हमारी आत्मा, हमारा प्राण और हमारी देह सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हमारा प्रभु आने वाला है, प्रभु हमारे को पवित्र करे, हमें पवित्र करे अपने वचन के द्वारा, और उस और उसका जो वचन है जिसके द्वारा वो हमें पवित्र करता है, ये वचन है और वो वचन ही सत्य है, और इस सत्य के द्वारा ही वो हमें पवित्र करता है और सिद्ध करता है। जिस प्रकार और हम उसके खून खरीदे हुए लोग हैं, हम जो के नया जन्म पाए हुए उसकी संतान हैं, यही वो सत्य की संतान है, क्योंकि बगैर पवित्रता के कारण कोई भी परमेश्वर को देख नहीं पाएगा। और हमने इस चीज को देखा, हमारे अपने जो कार्य हैं उसके द्वारा नहीं, हमने जो प्रार्थना करी आजकल, मैंने कहा प्रभु मैं अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता, प्रभु तू मुझे पवित्र कर और अपनी उपस्थिति के द्वारा मुझे पवित्र कर, अपने वचन के द्वारा, अपने वचन की उपस्थिति के कारण तू मुझे पवित्र कर, मैं अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता। हमारी ये जिज्ञासा है, हमारी ये आशा है और यही हमारे जीवनों का संपूर्ण होना है, सिद्ध होना है। जितना सुधार है वो उसको हमें मानना है प्रभु के वचन से। हम यहाँ ना कहें पर ये कितना है, ये इतना तेज है। जैसे भाई ब्रैनम ने कहा अपने आखिरी सर्मन्स में बोला, जैसा उन्होंने कहा जो बहने हैं और उन्होंने उनको रखा और उन्होंने कहा जो हमें कहा गया है हमें उसे दिल से ग्रहण करना है, रिसीव करना है। और जैसा उसने कहा कि हर भाई और एक बहन, ये बहन और हर भाई इस बात को पढ़े जिनको शादी करनी है, जो विवाह करने जा रहे हैं या विवाहित हैं, इस बात को पढ़े जो आपको कहे गए हैं, जिससे के आपके उस रिश्ते में एक आत्मिक सुलह हो, एक आत्मिक अंडरस्टैंडिंग हो, हार्मनी हो, समानता हो। मैं बहुत इसके बारे में सोचता हूँ भाई ब्रैनम कई बारी गुस्सा हो जाते थे, नाराज हो जाते थे, सीरियस हो जाते थे। वो कह रहे थे कि वो इतना सख्त हो जाते थे, गंभीर हो जाते थे कि सारा जो प्रॉब्लम थी, सारा गुनाह, सारी मुश्किलें जो थी ईव की वजह से आई। और प्रभु कह रहा है देखिए हमारे पास एक और संदेश है, प्रभु का वचन है, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय और पहली आयत, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:1, हे भाइयों हम अब अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन और पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझ कर के प्रभु का दिन आ पहुंचा, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए, तुम ना घबराओ। ये वो बातें बता रहा है प्रभु के आने के समय की, बोल रहा है मैं तुमसे विनती करता हूँ प्रभु के आने के बारे में और अपने इकट्ठे होने के विषय में, हमारे इकट्ठे होने के विषय में मैं तुमसे विनती करता हूँ। कहता है दूसरी आयत, किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से है, ये समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, किसी रीति से किसी के धोखे में मत आ जाना, तुम्हारा मन ना घबराए, ना तो किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा मानो हमारी ओर से हो, ऐसा मत समझ लेना, ऐसा लगे कि प्रभु का दिन आ चुका, ऐसा ना समझ लेना, इस गलत शिक्षा में मत फंस जाना। पौलुस उनको चौकन्ना कर रहा है, प्रभु ने हमें बता दिया कि यहाँ इस कलाम में, वचन में क्या लिखा है, उसने हमें बता दिया और उसने अपने वचन से बता दिया। हमें किसी बाहर के प्रकाशन की जरूरत नहीं, किसी स्पेशल रेवलेशन की जरूरत नहीं, हमारे पास तो दे दिया उसने अपने वचन में, सारा का सारा प्रकाशन उसने अपने अपने वचन में हमको दे दिया। और मेरा मन बड़ा व्याकुल हो गया
कि हम
हिल ना जाएं और हमारा मन ना व्याकुल हो जाए. इसलिए हम कभी व्याकुल ना हो जाएं. और पौलुस कह रहा है वो प्रभु का जन है और सभी स्थानों में हमें बहुत हर चीज के अंदर वो आत्मा के द्वारा चलता था कि हमको प्रभु ने कोई कहे कि ऑलरेडी प्रभु का दिन तो आ चुका हमें पता ही नहीं चला. नहीं नहीं नहीं, ये गलत शिक्षा है, इसको ना माने, इसको भूल जाए, ये गलत शिक्षा है. पौलुस यहाँ देखिए कितना हमें कितना चौकन्ना कर रहा है, कितनी चेतावनी दे रहा है. ऐसा मत समझ लेना, ना वचन के द्वारा और ना किसी पत्री के द्वारा मत समझ लेना कि प्रभु का दिन आ गया है. नहीं, और हमारा और ये जो हम मैंने बताया प्रभु के आने के बारे में और हमारे मिलने के बारे में जो मैंने बताया, इसके बारे में बड़े चौकन्ने रहना, किसी झूठी शिक्षा में मत आ जाना. जैसा कि लिखा है इसी प्रकार से जिस प्रकार से वो लिखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर प्रभु यीशु किस तरीके से आएगा, क्या क्या होगा और किनके लिए आएगा, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा लिखा है. किसी दूसरी शिक्षा में मत भरमाए जाना. और प्रभु का जो जीवित कलीसिया है, मंडली है, जो आखिरी संदेश है वो आगे चला गया है और जो आखिरी पुकार है वो भी आ चुकी है और सारे लोग और सब लोग जो हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु अपना संदेश, अपना वर्क, अपना काम, जो अलौकिक काम हमारे जीवनों में कर देवे. और जैसा हमने कहा शुरू में कि और हमारे पास लंबे लंबे संदेश सुनने का समय नहीं है हमारा. अब तो हमको अपने घुटनों को प्रभु के आगे टिका देना है और उससे कहना है और अनुभव करना है इस बात का, इस सामर्थ्य का कि हमारे ऊपर पुनरुत्थान की वो सामर्थ्य प्रकट की जाए और प्रभु के संदेश को हम जान सकें. और जब हमने कहा, जैसा पहले कहा जकरिया 4 में कि वो जो सिरे का जो पत्थर है, जो पहला और आखिरी, यानी के कोने का पत्थर और सिरे का पत्थर, ये दोनों अल्फा और ओमेगा को दर्शाते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं. ये कितना बड़ा अनुग्रह है और इस कंफ्यूजन में जिसमें हम आज पाए जाते हैं सारे संसार में, और हमको अनुग्रह मिला है कि हम उसके उस अद्भुत और अलौकिक और प्रकाशित और प्रचार किए गए वचन के ऊपर विश्वास कर सकते हैं और उस पर अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवनों में उसका अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवनों में विश्वास के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं. इसका हम अनुभव करें, इस पूरे काम का, अपने जीवनों में सिद्ध होने का अनुभव करें. और प्रभु के नाम को सारी महिमा. प्रभु आप सबको आशीष दे. स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में और सारे यूरोप में और पूर्व और पश्चिम में सबको वो आशीष दे और सबको सारी भाषाओं में, सारे देशों में और सारे नगरों में प्रभु अपना काम पूरा करता है, अपने काम को सिद्ध करता है. और प्रभु हमारे समय में आए, हम उसका इंतजार कर रहे हैं. मारानाथा, और प्रभु का नाम आशीषित हो, उसके नाम की बड़ाई और महिमा हो. और प्रभु हम सब खड़े हो जाएंगे और भाई स्मिथ आकर के हमारे साथ प्रार्थना करेंगे. और
Gnadenreicher Herr,
हमारे स्वर्गीय पिता, तेरे तरफ देखते हुए हम तेरे को धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं इस समय के लिए कि तूने ऐसा होने दिया। तूने अपना वचन जो है उस दीपदान पर रख दिया और तूने हमें अनुग्रह दिया कि तूने कि हमें एकदम सीधा सादा नम्र रहना है और विश्वास करना है, क्योंकि सारा का सारा क्योंकि सारा सारी महिमा तुझे देनी है। और तूने हमसे बातचीत करी जिस प्रकार से तूने हमसे हमेशा बातचीत करी इस समय में और जिसमें अब हम आखिरी समय में चल रहे हैं प्रभु, और प्रभु ये हमारे जीवनों में सामने आ रहा है और प्रभु तूने हमें ऐसा बनाया कि हम उसकी तरफ अपने ध्यान केंद्रित कर सकें, हमारे मनों को हम ऊंचा उठा सकें इन चीजों को देख कर और हमें अनुग्रह दे कि तूने हमें जो उद्धार का काम दे दिया प्रभु, और प्रभु जो तेरे वचन को लेते हैं इस और ये उद्धार का काम इतना नजदीक है, इसका सिद्ध होना इतना नजदीक है जिस प्रकार से सारी संसार में प्रार्थना की गई प्रभु, और प्रभु हमारे साथ हो प्रभु हम, और प्रभु जिस प्रकार से और प्रभु एमाउस की राह वाली कहानी हमारे साथ हो प्रभु, और प्रभु समय बीतता जा रहा है और प्रभु तेरा वचन हम पर प्रकट हो रहा है, तू हम पर प्रकट हो रहा है, और प्रभु तेरे वचन में उन्नति होती जाए, तेरे वचन में बढ़ोतरी होती जाए प्रभु, और तेरे नाम को ही हम बढ़ाई और महिमा देते हैं। हमें अपने वचन में रख और जिसको तूने ये आज्ञा दी बुलाहट दी उसको भी संभाल के रख, उसकी भी सुरक्षा कर प्रभु के नाम में, आमीन आमीन आमीन।
Shout!
ist nah, denn eure Erlösung ist nah. Die wahren Gotteskinder erheben froh ihr Haupt, die Schande überwinden, die seinen Wort geglaubt. Es warten die Erlösung und freuen sich darauf. Sie wird sein Leben.
Es schaut die Posaune gar mal, es schaut die Posaune.